यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 5 मार्च 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। म्यांमार में बीता सप्ताह रहा खासा रक्तरंजित। सेना विरोधी प्रदर्शनों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों द्वारा सेना के दमन की भर्त्सना। कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर। लगभग 17 करोड़ बच्चे रह गए एक साल तक स्कूली शिक्षा से वंचित। न्यायसंगत वैक्सीन वितरण के लिए ये सप्ताह रहा अभूतपूर्व, मगर वैक्सीन उत्पादन तेजी से बढ़ाए जाने की भी पुकार। इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान। और MBA जैसी उच्च पेशेवर शिक्षा हासिल करने के बाद राजस्थान के एक गांव में सरपंच बनकर बदलाव की बयार लाने वाली छवि राजावत के साथ एक इंटरव्यू। हम आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। म्यांमार के लिए यूएन महासचिव की विशेष दूत क्रिस्टीन श्रेनर बर्गेनर ने सुरक्षा परिषद को ताज़ा हालात से अवगत कराते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को म्यांमार में सेना द्वारा किए जा रहे हिंसक बल प्रयोग को रोकने और देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली के लिए तत्काल ठोस कार्रवाई करनी होगी। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशुलेट ने गुरुवार को कड़े शब्दों में कहा कि म्यांमार में सेना को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अपना क्रूर और हिंसक दमन रोकना होगा। मानवाधिकार उच्चायुक्त का ये सख्त बयान ऐसी खबरों के बीच आया कि 1 फरवरी को सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के बाद से अब तक कम से कम 54 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 38 लोगों की मौत अकेले बुधवार को केवल एक दिन में हुई। म्यांमार से जुड़ी विभिन्न खबरों का सार सुनिए सचिन गौड़ से।
म्यांमार में जारी विरोध प्रदर्शनों में हताहतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर विशेष दूत क्रिस्टीन श्रेनर बर्गनर ने शुक्रवार को बंद दरवाजों के पीछे सुरक्षा परिषद की बैठक का स्वागत किया। उन्होंने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को ध्यान दिलाया कि म्यांमार पर उनकी एकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विशेष दूत ने बताया कि सेना द्वारा 1 फरवरी को सत्ता पर कब्जा जमा लिए जाने के बाद से ही वो देश में विभिन्न समुदायों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि संकल्पित सिविल अधिकारी वास्तविक नायक हैं और देश की लोकतांत्रिक प्रगति के संरक्षक भी। लेकिन विशेष दूत ने आगाह किया कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों से उन्हें जिस आशा का संचार हुआ था वो धूमिल हो रही है। यूएन के विशेष दूत के अनुसार उन्हें हर दिन 2000 से ज्यादा संदेश मिल रहे हैं, जिनमें देश की जनता की आकांक्षा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पलटे जाने से रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की पुकार लगाई गई है। यूएन की विशेष दूत का कहना है कि अब तक 50 से ज्यादा निर्दोष और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोग मारे जा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हताहत हुए हैं। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऐसे सबूत एकत्र हो रहे हैं जो कि दर्शाते हैं कि सेना द्वारा लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है। बताया गया है कि 2 मार्च तक प्रदर्शन कर रहे 1000 से ज्यादा लोगों को या तो हिरासत में लिया जा चुका था या उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। विशेष दूत ने सदस्य देशों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि ये सभी का सामूहिक दायित्व है कि रक्षा विहीन को सुरक्षा प्रदान की जाए। उनके मुताबिक म्यांमार की जनता की आशाओं को पूरा करना सुरक्षा परिषद के एकजुट समर्थन और कार्रवाई पर निर्भर करता है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने गुरुवार को कड़े शब्दों में कहा था कि ये देखना बेहद दिल दहला देने वाला है कि सुरक्षा बल पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशों या अनुशंसाओं के कारण दुनिया भर में करोड़ों बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न हो गया है और इन हालात के कारण हर 7 में से लगभग 1 बच्चा अपने घर पर ही रहने को विवश है। यूनिसेफ ने नए अध्ययनों के आधार पर गुरुवार को कहा कि दुनिया भर में 33 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे और युवजन 2020 में लगभग मार्च महीने में कोरोना वायरस बेकाबू होकर फैलने के समय से लेकर कम से कम 9 महीनों तक अपने घरों के भीतर ही रहने को मजबूर रहे हैं। यूनिसेफ प्रवक्ता जेम्स एल्डन ने कहा कि इन हालात के कारण ये बच्चे अलग थलग महसूस कर रहे हैं और उनमें अपने भविष्य को लेकर भी चिंताएं भर गई हैं। महामारी के नतीजे के रूप में सामान्य स्थिति बनी तालाबंदी और पाबंदियों की परिस्थितियों में करोड़ों बच्चों में अकेलेपन की भावना, भय और चिंता घर कर गए हैं। उन्होंने कहा कि देशों को बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की खातिर इस महामारी से उबरने के लिए कहीं बेहतर तरीके सोचने होंगे। एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर के लगभग 93% देशों में महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं या तो बाधित कर दी हैं या पूरी तरह ठप कर दी हैं। यूनिसेफ प्रमुख हेनरिएटा फोर ने बुधवार को कहा कि हर दिन बीतने के साथ स्कूलों में निजी अनुभवों के साथ शिक्षा हासिल करने के अवसर बच्चों से और भी ज़्यादा दूर होते और पीछे छूटते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा वंचित हालात में रहने वाले व हाशिए पर धकेल दिए गए बच्चों को सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रेसस ने कहा है कि ये हफ्ता न्यायसंगत वैक्सीन वितरण के लिए शुरू की गई कोवैक्स पहल के नज़रिए से अभूतपूर्व साबित हुआ है। अब तक कोवैक्स के तहत 20 देशों में 2 करोड़ टीकों की खुराकें पहुंचाई जा सकी हैं, मगर UN स्वास्थ्य एजेंसी ने आगाह भी किया है कि वैक्सीन उत्पादन की रफ्तार धीमी है और महामारी पर जल्द काबू पाने के लिए वैक्सीन उत्पादन क्षमता जल्द से जल्द बढ़ाई जानी होगी। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कोवैक्स पहल के लिए ये एक अभूतपूर्व सप्ताह साबित हुआ है। गाना और आइवरी कोस्ट में वैक्सीनों की खेप पहुंचने के बाद वहां टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। इन 2 देशों के अलावा कोवैक्स पहल के अंतर्गत कुल मिलाकर 20 देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें भेजी गई हैं और अगले सप्ताह 31 अन्य देशों में 1,44,00,000 खुराकें भेजी जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन वितरण में मौजूदा प्रगति को उत्साहजनक बताया है, लेकिन आगाह भी किया है कि अब भी कम खुराकों का ही वितरण हो पा रहा है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने कहा,
The first round of allocations covers between 2 and 3% of the population of
पहले दौर के वितरण में कोवैक्स के जरिए वैक्सीन पाने वाले देशों की 2 से 3% आबादी के लिए ही टीकों का इंतजाम हो पाया है। UN एजेंसी प्रमुख ने महामारी पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए वैक्सीन उत्पादन को तेजी से बढ़ाए जाने की बात कही है। UN एजेंसी प्रमुख ने कहा कि इन चुनौतियों पर पार पाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन 4 अहम बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पहला, वैक्सीन उत्पादन कर रही कंपनियों को उन कंपनियों से जोड़ना जिनके पास तेजी से टीकों को तैयार करने की क्षमता है। दूसरा, द्विपक्षीय रूप से टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करना, यानी एक वैक्सीन का पेटेंट रखने वाली कंपनी दूसरी ऐसी कंपनी को स्वैच्छिक रूप से लाइसेंस प्रदान करे जो वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम हो। इसका उदाहरण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन है, जिसे भारत में सीरम संस्थान और कोरिया गणराज्य में एसके बायो कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। तीसरा समाधान, समन्वित टेक्नोलॉजी हस्तांतरण। इससे विश्वविद्यालय और विनिर्माता कंपनियां UN स्वास्थ्य एजेंसी की देखरेख वाली एक वैश्विक प्रक्रिया के तहत अपनी वैक्सीनों का लाइसेंस अन्य कंपनियों को प्रदान कर पाएंगे। चौथा, बहुत से ऐसे देश जिनके पास वैक्सीन विनिर्माण की क्षमता है, उन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों में छूट मिलने के बाद वो भी अपनी वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने COVID-19 महामारी के दौरान उसके सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभावों का सामना कर रही निर्धनतम महिलाओं के लिए अस्थायी बुनियादी आय प्रदान किए जाने की अहमियत को रेखांकित किया है। UN एजेंसी की नई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करके कोरोना वायरस संकट के प्रभावों को कम करने और उन्हें दैनिक जीवन में सामने आने वाले वित्तीय दबावों से उबारने में मदद मिलेगी। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
UNDP ने गुरुवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय समर्थन के जरिए बढ़ती निर्धनता और गहराती लैंगिक विषमता की रोकथाम की जा सकती है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। UN एजेंसी ने कहा, इस महामारी के दौरान पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा प्रभावित हुई हैं, उनकी आय खत्म हो गई है, श्रम बाजार छोड़ने की दर कहीं अधिक है और देखभाल संबंधी कामकाज भी उनके हिस्से में ज्यादा आया है। एक अस्थायी बुनियादी आय के जरिए अल्पकाल के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जिससे भविष्य में व्यवस्थागत लैंगिक विषमता से निपटने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। यूएनडीपी के अनुसार विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद के 0.07 से 0.31% के मासिक निवेश की मदद से 61 करोड़ से ज्यादा कामकाज उम्र की महिलाओं के लिए भरोसेमंद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। बताया गया है कि इस क्रम में 51 अरब डॉलर की धनराशि की आवश्यकता होगी। यूएनडीपी के प्रशासक एकिम श्टाइनर ने कहा कि सरकारें गंभीर सामाजिक आर्थिक दबाव झेल रही महिलाओं तक जरूरी धनराशि पहुंचाकर इस अभूतपूर्व दौर में भी उनके लिए जीवन रक्षक मदद सुनिश्चित कर सकती है।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को व साझीदारों द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा को साकार करने और किसी को भी पीछे न छूटने देने के लिए अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में व्याप्त क्षेत्रीय विसंगतियों को दूर किया जाना होगा। इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नामक ये रिपोर्ट गुरुवार 4 मार्च को टिकाऊ विकास लक्ष्य के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस के मौके पर जारी की गई। ये अध्ययन दर्शाता है कि टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने में मौजूदा इंजीनियरिंग प्रणालियां अपर्याप्त हैं और इस क्षेत्र में विविधता का भी अभाव है। टिकाऊ विकास पर आधारित 2030 एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त ऐसे 17 लक्ष्यों का समूह है जिनके जरिए एक शांतिपूर्ण व समृद्ध पृथ्वी का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजूले ने कहा कि इंजीनियरिंग हमारे समाजों के टिकाऊ विकास और पूर्व संभावनाएं हासिल करने की अहम कुंजियों में से एक है। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 महामारी ने टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की पुकार को और प्रबल बनाया है, साथ ही टिकाऊ विकास में इंजीनियरिंग की प्रासंगिकता को भी पुष्ट किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाना एक ऐसे पेशे में समावेशन व लैंगिक संतुलन के लिए अहम है जिसकी विकास व मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका है। यूएन एजेंसी ने स्पष्ट किया कि इस पेशे के महत्व के बावजूद इंजीनियरिंग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से कम रहा है। कुल कार्यबल का केवल 10-20% ही महिलाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा है कि इस्लाम के नाम पर किए गए 11 सितंबर 2001 के हमलों और अन्य भयावह आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिए जाने के बाद से मुसलमानों को संदिग्ध नज़र से देखे जाने की समस्या महामारी का आकार ले रही है। धर्म या आस्था की आज़ादी पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर अहमद शहीद ने गुरुवार को मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए देशों का आह्वान किया कि मुसलमानों के साथ भेदभाव पर अंकुश लगाने के लिए उपाय सुनिश्चित किए जाने होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
मानवाधिकार विशेषज्ञ अहमद शहीद ने कहा कि सुरक्षा खतरों के मद्देनजर अनेक देशों क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने ऐसे उपाय अपनाए हैं जिनका निशाना विषमतापूर्वक मुसलमान बने हैं। इस्लामोफोबिया मुसलमानों के इर्द गिर्द कल्पनाओं को बुनता है जिनका इस्तेमाल राज्य सत्ता द्वारा प्रायोजित भेदभाव और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी और हिंसा को न्यायोचित ठहराने के लिए किया जाता है। अहमद शहीद ने मानवाधिकार परिषद को एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि मौजूदा हालात मानवाधिकारों के लिए कठोर नतीजे भरे हैं जिनमें धर्म या आस्था की स्वतंत्रता के लिए जोखिम भी है। विशेष रिपोर्टर के अनुसार बहिष्करण भय और अविश्वास के इस माहौल में और संदिग्ध समुदाय से संबंध रखने के रूप में देखे जाने के कारण मुसलमानों को अक्सर कलंकित और शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें महसूस होता है कि चंद लोगों के कृत्यों के लिए उन्हें सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मानवाधिकार परिषद को पेश इस रिपोर्ट में जिन चिंताओं का उल्लेख किया गया है उनमें आस्था प्रकट करने की क्षमता पर पाबंदियां लगाए जाने, धार्मिक समुदायों को सुरक्षित बनाने, नागरिकता पाने की सुलभता को सीमित किए जाने, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार और मुस्लिम समुदायों को कलंकित किए जाने सहित अन्य नीतियां शामिल हैं। यूएन विशेषज्ञ ने सभी देशों से मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों से लड़ने और धार्मिक नफरत को बढ़ावा देकर हिंसा उकसाने की रोकथाम करने के लिए हर संभव उपाय किए जाने का आग्रह किया है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के एक नए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में बेचा गया 93 करोड़ टन से ज्यादा भोजन कूड़ेदानों में फेंक दिया गया। यूएन एजेंसी के अनुसार भोजन की बर्बादी केवल धनी देशों की समस्या नहीं है और इससे जलवायु परिवर्तन के लिए भी खाद मिलती है। वर्ष 2030 तक टिकाऊ विकास एजेंडा के तहत भोजन की बर्बादी में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 नामक ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट दर्शाती है कि घरों, रेस्तराओं और दुकानों से जितनी भोजन बर्बादी होती है उसका लगभग 17% हिस्सा भोजन फेंक देने के कारण बर्बाद होता है। इससे स्पष्ट है कि कुल भोजन उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा कभी खाया ही नहीं जाता। यूएन पर्यावरण एजेंसी की कार्यकारी निदेशक इनगेर एंडरसन ने कहा कि अगर हम जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण व बर्बादी से निपटने के लिए गंभीर होना चाहते हैं तो व्यवसायों, सरकारों व नागरिकों को भोजन की बर्बादी घटाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। अध्ययन बताता है कि वर्ष 2019 में 69 करोड़ लोग भुखमरी से प्रभावित थे और 3 अरब से ज्यादा लोग सेहतमंद आहार जुटाने में असमर्थ थे। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं से जुड़े मुद्दों व लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है नेतृत्व पदों या भूमिकाओं में महिलाएं। इस दिवस के मौके पर उन महिलाओं के योगदान को भी उजागर किया जाता है जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में प्रभावशाली नतीजों वाला काम किया हो। ऐसी ही एक महिला हैं छवि राजावत, जिन्होंने MBA जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत के राजस्थान प्रदेश में एक गांव की सरपंच बनने का रास्ता चुना और उन्होंने ढेर सारी रुकावटों का सामना करते हुए अनेक प्रगतिशील बदलाव लाए जिनसे ग्रामीणों के जीवन में बहुत सुधार आया। UN न्यूज़ हिंदी की सहयोगी अंशु शर्मा ने छवि राजावत के साथ बातचीत की और पहला सवाल यही पूछा कि सरपंच बनने के उनके सफर की शुरुआत किस तरह हुई।
जो निर्णय था सरपंच बनने का वो मेरा खुद का नहीं था, ये हमारे ग्रामवासियों का निर्णय था, क्योंकि 2010 में महिला रिजर्व सीट थी और उन्हें लगा कि अगर हमारे परिवार से कोई आता है तो विकास जो उन्हें चाहिए था हमारे गाँव में, उन्हें लगा कि हमारे परिवार से अगर कोई आता है तो वो जरूर सही प्रकार से काम करेगा और जो विकास देखना चाहते थे गांव वाले उन्हें ये पक्का पता था कि अगर वो मुझे लेके आते हैं मैं कैसे न कैसे करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको जरूर इम्प्रूव करूंगी। जब वो हमारे पास आए, मैं उस वक्त जयपुर में थी, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे यही लगा कि जिस कंडीशन में इन सच एडवर्स कंडीशन दे वर लिविंग, it was important that someone stepped forward and came forth to help. aur usi ki wajah se maine nirnay liya ki main sarpanch banungi.
sarpanch banne ke baad aapne gaon ki kayakalp bhi kar di, to tab se aaj tak gaon mein kis tarah ke badlav aap layi aur kis tarah ki pariyojnaen abhi bhi chal rahi hain jin par aap kaam kar rahi hain?
sabse pehle of course prathmikta peene ke pani ke liye thi, जिसमें हमने सरकार के साथ साथ नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में जो खासकर पानी पे काम करते हैं उनसे हम जाके मिले और वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट यूनाइटेड नेशंस के साथ भी हमने कोशिश की कि कहाँ कहीं से तो गाइडेंस हमें मिले कि कैसे हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हम लेके आ सकें। तो हमारे पास ऐसे कोई भी फंड्स उपलब्ध नहीं थे जिसको हम वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज कर पाते। हमारे तालाब को की खुदाई की जरूरत थी, उसके लिए एज सच ना तो स्टेट से कोई सपोर्ट मिल पाया ना ही सेंटर से हमें सपोर्ट मिल पाया। एंड आई रीच्ड आउट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, सिर्फ 4 दिन में लोगों से मिलके मेरे फादर के 3 फ्रेंड्स और मेरे फादर ने सपोर्ट किया और सिर्फ 4 दिन में हमने 20 लाख इकट्ठे कर लिए, जिससे हम हमारा तालाब, मेन तालाब जो है हमारे गांव का वो 100 एकड़ का है। तो 20 लाख से हम सिर्फ 10 एकड़ ही खोद पाए, बट जस्ट इन टाइम क्योंकि मॉनसून आने वाला था और जैसे ही हमने हमारी जो प्लान था खुदाई करने का, जैसे ही हमने वो कंप्लीट किया बारिश आ गई एंड लकली 2010 द वेरी फर्स्ट शावर वॉज वेरी गुड एंड गुड इनफ टू फिल द इंटायर रेजर्वॉयर। तो उससे हमें पूरे साल तक पीने का पानी मिला, और उसी से, क्योंकि हम सरफेस वाटर पे डिपेंड करते हैं खेती तक के लिए, हमारे जो किसान भाई बहन थे उनके जो प्रोडक्शन थी ऑफ एग्रीकल्चर वो कम से कम 70% बढ़ गई थी। साथ ही में हमने बैंकिंग फैसिलिटी खोली, हमने इंश्योर किया कि हर घर के लिए शौचालय उपलब्ध था, ये हमने 2010 में ही शुरू कर दिया था, और सड़कें बनवाई, और वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया।
सरपंच के पद पर इस सफर के दौरान क्या आपको महिला होने के नाते भी किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या कभी ऐसे कोई क्षण आए जब आपको लगा कि ये सब छोड़ देना चाहिए?
मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये सब छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे जहाँ पे भी मुझे किसी भी प्रकार के का पुश बैक मिला या रुकावटें आई, तो मैंने और जिद ठान ली कि उसको सही प्रकार से कंटिन्यू कर सकूं। पर हाँ, कुछ लोग, खासकर जब मैं ब्लॉक स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे लोगों से मिलती थी, तो वो यूज टू नहीं थे कि एक महिला आके उन्हें क्वेश्चन करे और डिमांड करे। एंड क्योंकि एक महिला आ रही थी, क्वेश्चन कर रही थी, और साथ में मैं उम्र में उन सबसे बहुत काफी छोटी थी, तो इसलिए भी कुछ लोगों को शायद ठेस पहुंचती थी, जिसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमें झेलना भी पड़ता था।
क्या लगता है, क्या महिलाएं बेहतर राजनेता होती हैं, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा ईमानदार होती हैं, और लोग उनसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं?
एक महिला ही एक दूसरी महिला का दर्द समझ सकती है, उनके इश्यूज को आसानी से समझ सकती है, जो अक्सर पुरुष कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। और ऐसे स्पेसेस में जहाँ लीडरशिप इंक्लूसिव हो, जहाँ पुरुष को भी आवाज की आवाज भी सुनी जाए, जहाँ महिलाओं की भी आवाज सुनी जाए, जहाँ वहाँ होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि युवा और बच्चे भी आगे आते हैं।
अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हालांकि भारत में समय समय पर महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, महिला स्पीकर सबके रूप में काफी प्रगति होती रही है, ग्रास रूट्स पर भी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, लेकिन ये प्रतिनिधित्व जो है ये देश की संसद में नहीं दिखता। अभी भी संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। ये जो जेंडर अंतर है, ये जेंडर अंतर पाटने के लिए किस तरह के समाधानों की जरूरत है आपके विचार से?
जो क्वालिटी की बात हो उसमें जरूरी है कि हम सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मुझे लगता है कि जो पुरुष जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जरूरत है ट्रेनिंग की, और वो ट्रेनिंग और साथ में हैंड होल्डिंग की जरूरत महिलाओं को थोड़ी ज्यादा है। और मेरा ये मानना है कि अगर वो ट्रेनिंग, वो सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे ये लगे कि महिलाएं ट्रस्ट कर सकती हैं उस सपोर्ट सिस्टम को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला पीछे हटेगी। और साथ में जो मानसिक सोच है, मुझे लगता है कि अगर हम बहुत ही बेसिक चीज पे अगर जाएं, जैसे स्कूलों में अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि ऑपोजिट्स डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि व्हाइट का ऑपोजिट क्या है, सफेद का विपरीत क्या है, काला मानते हैं, और अगर आप पूछें कि पुरुष का क्या है, लोग महिला कहते हैं। और यहाँ पे ही शुरुआती स्तर पे ही हम बहुत गलत चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि मेन एंड वुमेन आर नॉट ऑपोजिट्स, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है, और इसकी शुरुआत हमारे घरों में होती है और समाज में होती है।
छवि राजावत के साथ इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, अब महबूब खान को अनुमति।